जया यमुना तीरा कन छारी जया कुंज बिहारी कुंज राधा माधव जय कुंज राधा राधा माधव जय कुंज नितय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीतारा राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप। जो लोग हिंदी जानते हैं किताब ले लीजिए। आप लोग आगे आइए, दूर बैठे हैं आगे आइए, हिंदी पढ़ते हैं तो किताब ले लीजिए। इतना दूर बैठने की जरूरत नहीं है, आगे आइए, हिंदी की किताब है। हिंदी हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हिंदी पढ़ते हैं तो किताब लीजिए। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार सन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 2 पृष्ठ संख्या 521 निकालिए 521 पेज नंबर 521। मिल गया सबको? मिल गया? आपको नहीं मिला, इनको नहीं मिल रहा है। 521 नहीं जानते पेज नंबर 521 पेज नंबर 521। मेरे पीछे बोलिए श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहोस्त्यागं विचक्षणा श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहोस्त्यागं विचक्षणा श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा बोलिए
श्री भगवान वाच
और कोई अच्छा शब्दार्थ बोलिए काम्यानाम श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा काम्यानाम काम्य कर्मों का कर्मणाम कर्मों का न्यासं त्याग सन्यासं सन्यास कवयः विद्वान जन विदुः जानते हैं सर्व समस्त कर्म कर्मों का फल फल त्यागम त्याग को प्राहु कहते हैं त्यागम त्याग विचक्षणा अनुभवी अनुवाद मेरे पीछे बोलिए भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। यहाँ पर धागा लगाइए, धागा धागा है आपका जो फैला हुआ है, धागा लगाइए इसके अंदर, धागा लगाइए और भूमिका में पहला पेज निकालिए। ये बच्चे किसके हैं? बच्चे शोर नहीं करेंगे, आपकी बहुत जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चे खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे। बच्चों को शांत करिए या फिर बाहर ले जाइए, आपस में बातें नहीं, आपसे बोलना हूँ इनसे, इनको इनको समझाइए, आपस में बातें नहीं, आपस में कोई मीटिंग नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ जो लोग बैठे हैं आपस में कोई मीटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल मना है। अभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, अगर सुन सकते हैं तो बहुत लाभ होगा, और नहीं तो बाहर जाइए, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे। भूमिका में पहला पेज निकालिए, सब लोग मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्त ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में सबसे पहले लिखा है श्री भगवान वाच। क्या लिखा है? श्री भगवान वाच, यानी श्री भगवान ने कहा, है ना। इसके बाद शब्द हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का त्याग करना। संन्यासम कवियो विदु, संन्यास कवि लोग जो है इसी को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्मों का परित्याग करने को ही विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। तो संन्यास की परिभाषा भगवान ने बताई। अर्जुन ने पूछा था ना, संन्यास का तत्व और त्याग का तत्व पृथक पृथक मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने संन्यास का तत्व तो बतलाया। क्या है संन्यास का तत्व? कि काम्य कर्मों का परित्याग संन्यास कहलाता है। अब त्याग का तत्व तो भगवान बताते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। सब कर्मों के फल का त्याग ही विशेष विद्वानों ने त्याग बतलाया है, बुद्धिमानों ने त्याग बतलाया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से ये स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत गहरा है, लेकिन हम अब जो है इस श्लोक को समझेंगे कि भगवान किस तरह से इस श्लोक में संन्यास की परिभाषा अलग बता रहे हैं और त्याग की परिभाषा अलग बता रहे हैं, अंतर बतला रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, जिससे अंतर पता चले संन्यास में और त्याग, इन दोनों में क्या अंतर है। तो भगवान पृथक पृथक बतला रहे हैं। श्लोक संख्या एक में जो पहली पंक्ति है उसमें अर्जुन ने क्या कहा था, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं विच्छामि वेदतुम, कि मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ। पहली पंक्ति में अर्जुन ने भगवान से क्या कहा कि मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ, और दूसरी पंक्ति में अर्जुन ने क्या कहा, त्यागस्य चा हृषिकेश पृथक के पृथक केशी निशोधन, कि त्याग का तत्व पृथक जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन की बहुत इच्छा है कि संन्यास के तत्व को और त्याग के तत्व को अलग अलग जान लें, क्योंकि अभी तक अर्जुन अलग अलग नहीं जान पा रहे हैं और बातें मिश्रित हो रही हैं। अर्जुन का जो संदेह है अभी तक दूर नहीं हुआ। तो देखिए आज के श्लोक में भगवान ने जो है बड़ी सावधानी पूर्वक उत्तर दिया है अर्जुन के प्रश्न का। तो अर्जुन के प्रश्न की जो पहली पंक्ति है उसमें अर्जुन ने संन्यास की बात पूछी है, तो इस श्लोक की भी पहली पंक्ति में भगवान ने संन्यास की बात बतलाई है। क्या संन्यास की बात बतलाई, कि काम में कर्मों का परित्याग करना ही संन्यास है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन ने त्याग की बात पूछी, तो आज के श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान त्याग की बात बतलाते हैं। त्याग क्या है, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम विचक्षणा, जो विशेष अनुभवी हैं तो वे त्याग किसको बताते हैं, सब कर्मों के फल का त्याग, सभी कर्मों के फल का त्याग ही त्याग बतलाते हैं, त्याग करते हैं। तो त्याग में जो है कर्म का त्याग नहीं होता है बल्कि कर्म के फल का त्याग होता है, और संन्यास क्या होता है, कर्मों का ही त्याग करना, संन्यास में कर्मों का ही त्याग किया जाता है, कर्मों का त्याग किया जाता है, है? क्यों कर्मों का त्याग क्यों किया जाता है संन्यास में, क्योंकि जितने कर्म हैं इन सब में दोष है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है। तो संन्यास के क्षेत्र में ये माना जाता है कि जितने भी कर्म हैं ये सब दोष युक्त हैं, प्रत्येक कर्म में अपना कुछ इंद्रिय तृप्ति का भाव रहता है, इसलिए त्याग देना चाहिए। लेकिन जो विशेष अनुभवी हैं वे त्याग बताते हैं उसको, कि सब कर्मों के फल का त्याग करना ही त्याग है। तो सब प्रकार के कर्म कर सकता है जो विशेष अनुभवी है, वो सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, ये फल का त्याग करते हुए करता है तो उसे कोई बंधन नहीं होता। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से संन्यास और त्याग की परिभाषा दी। संन्यास के क्षेत्र में क्या माना जाता है, कि जितने कर्म है सब काम में हैं, यानी इंद्रिय तृप्ति की भावना से दूषित हैं। उनका ये कहना है कि आप कोई कर्म ऐसा नहीं कर सकते जिसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना ना हो, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जिसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना ना हो। और ये भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है या व्यापार करता है तो किस लिए करता है? अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, है ना। तो नौकरी करते हैं तो ओवर टाइम एक घंटा भी जो है अगर ज़्यादा अगर वो देते हैं तो ओवर टाइम लेते हैं, अगर ओवर टाइम ना मिले तो वे काम नहीं करेंगे। नौकरी करते हैं तो पहले से निश्चित हो जाता है कि भाई कितने से कितने बजे तक उनकी ड्यूटी है, और अगर वो ड्यूटी का टाइम उससे पहले आएंगे नहीं, उससे पहले अपना टाइम नहीं देंगे। 10 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी है तो 10 बजे से पहले वो ड्यूटी में नहीं आएंगे, और 6 बजे तक ड्यूटी है तो 6 बजे के बाद भी वो ड्यूटी में नहीं रहेंगे। और अगर उनको कहा जाए कि नहीं आप ज़्यादा टाइम दीजिए तो वो ओवर टाइम मांगेंगे, ओवर टाइम दीजिए। तो यही तो है, तो उद्देश्य जो है केवल यही है धन की प्राप्ति। और धन किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उनका कहना है कि संसार में जितने भी कर्म है वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं, तो उनको बिल्कुल त्यागना है, सभी कर्म त्यागना। तो फिर क्या करना है? एकांत में बैठना है, ध्यान का अभ्यास करना है। तो इस संन्यास की विधि भगवान ने आगे चल करके श्लोक संख्या 49 से श्लोक संख्या 55 तक 7 श्लोकों में संन्यास की विधि का वर्णन किया है। लेकिन जो विशेष अनुभवी हैं वे कहते हैं कि नहीं, कर्म ऐसे किए जा सकते हैं जिनमें फल का त्याग होता हो। तो ये विशेष अनुभवी हैं, उनको विशेष अनुभव है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कर्म ऐसा किया जा सकता है कि जिसमें फल का त्याग हो, और वे जो है ऐसे कर्म करते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। तो ये विशेष अनुभवी हैं जो संन्यास के क्षेत्र में जो विचार करने वाले हैं वे इतना नहीं जानते, वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए भी कार्य कर सकता है। तो ये जो त्याग का जो विषय है इसकी चर्चा भगवान ने गीता में जगह जगह की है, और इस अध्याय में भी भगवान श्लोक संख्या 48 तक त्याग की चर्चा करते हैं, इसमें बहुत विश्लेषण करते हैं, कई तरह की गहराई में भगवान इस बात की चर्चा करते हैं। और संन्यास की जो चर्चा है वो बहुत संक्षेप में करते हैं, केवल 7 श्लोकों में करते हैं, 49 से लेकर के 55 तक के श्लोकों में, और फिर से 56वें श्लोक से फिर भगवान त्याग की चर्चा करने लगते हैं। 56वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्यपिषदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम, कि सब प्रकार के कर्मों को करते हुए भी मेरे आश्रित होकर के व्यक्ति मेरी प्रसन्नता से शाश्वत और अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। तो त्याग की जो विधि है इसमें भगवान को प्रसन्न किया जाता है, और भगवान को प्रसन्न करने से व्यक्ति बहुत सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर जाता है। मत प्रसादात, मेरी प्रसन्नता से अब आपने होती शाश्वतम पदम अभ्यम, शाश्वत पद अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। तो जो त्याग की जो विधि है ये वास्तव में क्या है? भक्ति है, भक्ति योग है। और संन्यास की विधि इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें भक्ति प्रारंभ में भक्ति नहीं होती है। संन्यास की विधि बहुत कठिन है, है? अब संन्यास की विधि अगर देखें तो निकालिए पेज नंबर श्लोक संख्या 49, श्लोक संख्या 49 में भगवान संन्यास की विधि बतलाते हैं। भगवान कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रहा निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनादि गच्छति। कि सर्वत्र जिसकी बुद्धि विरक्त है और अपने मन को जीते हुए है, इच्छाओं को बस में किए हैं, तो वो निष्कर्म की सिद्धि प्राप्त करता है संन्यास के द्वारा। श्लोक संख्या 50 में भगवान कहते हैं सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करके उसी प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति करता है, हा? उसे जानो, मुझसे जानो। समासी ने कौन थे निष्ठा ज्ञान से अपरा। संक्षेप में मैं बताऊंगा, तो भगवान कहते हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा, ये विधि संक्षेप में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है ना। अब देखिए ये तीन श्लोकों में भगवान बताते हैं कितनी कठिन विधि है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियमचा। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के और धैर्य के द्वारा मन को बस में करके शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों को त्याग करके। शब्द आदि विषयों को त्याग करना है। शब्द आदि विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका त्याग करना। मतलब कितना कठिन है? शब्द का त्याग करना यानी कोई शब्द कानों से नहीं सुनना, कठिन है। आप कानों से कोई शब्द ना सुने, बहुत कठिन है, है? शब्द स्पर्श, स्पर्श का मतलब है कि किसी चीज के स्पर्श कभी आपको अनुभव नहीं करना है, स्पर्श। रूप, किसी प्रकार का रूप नहीं देखना है, रूप का भी त्याग करना है। रस, किसी प्रकार के रस का आस्वादन नहीं करना है। अगर भोजन करना है तो बिना रस का भोजन करना है, कोई रस नहीं होना चाहिए, कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। रस, गंध, और किसी प्रकार की गंध भी नहीं सूंघना है। शब्दाधीन विषयांश तक तो राग द्वेष हो अभी दशा, राग द्वेष को छोड़ना है। विविक्त सेवी, एकांत में रहना है। लघुवासी, और बहुत थोड़ा भोजन करना है। यत वाक काय मानसा, और वाणी शरीर और मन को जीतना है। ध्यान योग परो नित्यम, और ध्यान योग के हमेशा परायण रहना है। वैराग्यम समुपाश्रिता, और वैराग्य का अवलंबन करना है। फिर ये सब चीज त्यागना है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह त्यागना है। विमुच निर्म महाशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पति। तो इस तरह से कोई व्यक्ति निर्मम हो जाता है, शांत हो जाता है, तो ब्रह्मभूत होने के योग्य होता है। और ब्रह्मभूत होने के बाद ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति। प्रसन्न हो जाता है और शोक आकांक्षा नहीं करता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, और सब प्राणियों में समान हो जाता है तो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। तो देखो आखिर आए कहां पर? पराभक्ति में। तो आखिरकार तो भक्ति में आए, लेकिन शुरू में अगर भक्ति होती तो इतनी कठिनाई नहीं होती। शुरू में भक्ति नहीं थी इसलिए इतनी कठिनाई है ना। तो मत भक्ति में लभते पराम। फिर भक्तिया माम अभी जाना थी यावान यस्यास्मि तत्त्वतः। और जब भक्ति प्राप्त करता है तो मुझे जान लेता है कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। ततो माम ततो ज्ञात्वा विवेशते तदनन्तरम्। और मुझे तत्व से जान करके मेरी लीला में प्रवेश करता है। तो बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि भक्ति से शुरू नहीं किया इसलिए बहुत रास्ता कठिन और लंबा हो गया। लेकिन जो त्याग का क्षेत्र है उसमें भक्ति से शुरू करते हैं इसलिए रास्ता इतना लंबा नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए हाँ? अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है तो लंबे रास्ते से जाना चाहिए या छोटे रास्ते से? कौन से रास्ते जाना चाहिए? छोटे रास्ते जाना चाहिए। लंबा रास्ता क्यों करें? लंबे रास्ते में चलने का परिश्रम क्यों करें, है ना? तो अगर हमें छोटा रास्ता अगर पाना है तो हमें भक्ति को अपनाना है, है। श्लोक संख्या 56 में भगवान कहते हैं सर्व कर्मान निपिशता कुर्वाणो मत विपास्रया, सब कर्मों को सदा करते हुए मेरे आश्रित होकर के मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरी प्रसन्नता से प्राप्त करता है शाश्वतम पदम अभ्यम, शाश्वत पद और अविनाशी पद को, शाश्वत पद और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। तो मेरी प्रसन्नता से प्राप्त करता है। तो ये त्याग की विधि है। त्याग की विधि में भगवान को प्रसन्न किया जाता है और भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है, शाश्वत पद अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है भगवान की प्रसन्नता से। तो ये विचार करने की बात है कि भगवान को अगर हम प्रसन्न करें तो शाश्वत और अविनाशी पद हमें प्राप्त हो जाता है। ना फिर भगवान कहते हैं 57वें श्लोक में चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यस्य मत परहा, सभी कर्मों को चित्त के द्वारा मुझमें अर्पित करके और मेरे परायण होकर के, बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव, बुद्धि योग का अवलंबन करके मेरे चित्त वाले हमेशा बनो, मच्चित्ता सततम भव, हमेशा मेरे चित्त वाले बनो। 58वें श्लोक में कहते हैं मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरे शशी, अगर मुझ में तुम चित्त लगाओगे तो सभी कठिनाइयों को मेरी प्रसन्नता से पार कर जाओगे। तो कितना आसान हो गया, भगवान की प्रसन्नता से हम सब कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। अथचे तुम अहंकारान न श्रो शशि विनंग शशि, परंतु यदि अहंकार के कारण तुम नहीं मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। भगवान क्या कह रहे हैं, अहंकार के कारण यदि मेरी बात को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार आश्रित नहीं होती मन्य से, यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तुम मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्यास व्यवसाय अस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति, तो तुम्हारा ये निश्चय मिथ्या है, प्रकृति तुम्हें लगा देगी। स्वभाव जीने कौन ते निबद्धा स्वयं कर्मणा, तो हे अर्जुन अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे हुए तुम कर्तुम नहीं जन्म भात, जिस कर्म को नहीं करना चाहते हो करिष्यसि अपिशोपितात, उसको विवश होकर के करोगे। क्यों? तुम इस स्वभाव से बंधे हुए हो, तुम अपने स्वभाव से ऐसे कर्म से बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान ये बातें बताते हैं। तो अर्जुन इस अध्याय में जो प्रश्न पूछते हैं ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग पृथक रूप से जानना चाहते हैं। ये उसी प्रकार से जैसे 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा एवं सतत युक्ता ए भक्तास त्वाम परियुपासते, अगर सतत युक्त होकर के भक्त आपकी उपासना करते हैं, ये चापेक्षरम अव्यक्तम ते साम के योग्य वित्तमा, और जो दूसरे लोग अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा, एक तो आपके भक्त हैं आपकी पूजा करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं आपकी पूजा में, पूजा पाठ में लगे रहते हैं हमेशा। और दूसरे लोग हैं जो उपासना करते हैं किसकी, अक्षर और अभ्यक्ति की उपासना करते हैं, तो वे पूजा नहीं करते हैं, वे भगवान की सेवा नहीं करते हैं, अक्षर अभ्यक्त की उपासना करते हैं। तो परमेश्वर को अक्षर और अभ्यक्त मानते हैं, तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ योगी हैं? अर्जुन ने पूछा उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी हैं? है? आप समझ रहे अर्जुन का प्रश्न क्या है? है कौन बताएगा अर्जुन का प्रश्न क्या है? हाँ नहीं, ये तो आज के श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गीता के 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा?
जो आपकी सेवा में लगे
हैं, हाँ कुछ लोग तो आपकी पूजा करते हैं, हाँ एवं सतत युक्ता ए भक्ताश, तो आप जो भक्त हैं जो आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे हैं जो अक्षर अभ्यक्ति की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? तो ये भी उसी प्रकार का है जैसे त्याग और संन्यास अलग अलग। तो एक भक्ति का मार्ग है और दूसरा है अक्षर अभ्यक्ति का मार्ग, तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? तो भगवान क्या बताते हैं? मैया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो अपने मन को मुझ में आवेशित करके नित्य युक्त होकर के उपासना करते हैं, नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामता, परम श्रद्धा से वे मेरी उपासना करते हैं, तो ते में युक्त तमामता, तो वे मुझसे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने क्या बताया? सबसे ज्यादा जुड़े हुए कौन है? वो जो हमेशा मुझमें ही लगे रह करके पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट बताया, और फिर भगवान कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परोपासते, जो अक्षर अनिर्देश और अव्यक्त की उपासना करते हैं, सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थम चलम ध्रुवम, जो सर्वत्र जाने वाला है, अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, संयम इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों को बस में करके सर्वत्र समय बुद्धिया और समय जगह बुद्धि को समान करके, ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूते हिते रदा, तो वे भी मेरी प्राप्ति करते हैं सब प्राणियों के हित में रथ हो करके। तो इसमें कितनी कठिनाई है, सब प्राणियों के हित में आपको लगना पड़ेगा, सभी प्राणियों के हित में आपको लगना पड़ेगा, ये सभी प्राणियों का हित जानना बड़ा मुश्किल है, आप कैसे सभी प्राणियों के हित में लग सकते हैं? सभी प्राणियों का हित जानना बड़ा मुश्किल है, और एक व्यक्ति का आप हित करते हैं तो दूसरे का हित होता है, आप सब प्राणियों का हित कर नहीं सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का हित करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का अहित होता है, क्या करेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतर अस्ते साम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों के मार्ग में क्लेश ज्यादा है, अव्यक्ता ही गति दुखम देह बदभिर्वापते, जो देहधारी जीव है उसको अव्यक्ति की गति बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान ने स्पष्ट बताया, इसके पहले अर्जुन ने 5वें अध्याय में प्रश्न किया भगवान से, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम तसंससी, कि हे कृष्ण आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। ये श्री एत और एकम तन्मे ब्रूहे सुनिश्चितम, इन दोनों में से जो भी कल्याणकारी हो वो मुझे निश्चित रूप से बताइए। तो अर्जुन चूंकि भ्रमित हैं इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं, और अर्जुन के चरण चरणों पर अगर हम चले हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ति मदा बुद्धिर जनार्दन है, कि आप अगर कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हैं तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव, तो घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रे ने वाक्य ने बुद्धि मोहसी में, और मिश्रित मिले हुए वचनों मानो आप मने मिले हुए वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तदेकम बद निश्चित श्रेयो हम आपम, इसलिए एक ही बात निश्चित करके बताई जिससे मेरा कल्याण हो। तो अर्जुन जो है केवल एक ही दिशा में चलना चाहते हैं जिसमें उनका कल्याण होगा, और भगवान से क्या बताते हैं कि कुछ दूसरी दिशा की बातें मत बताइए, एक ही दिशा में मुझे चलाइए। तो अर्जुन की इच्छा है कि इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया जाए, उसी कारण से अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं गीता में ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत उपयोगी हैं। अर्जुन ने जिस तरह से भगवान से प्रश्न किए हैं उसमें कोई चुनौती का भाव नहीं है, तो ये विधि है सुनने की। आप किसी साधु महात्मा से अगर सुनते हैं तो आपको उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए, कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रश्न कर सकते हैं लेकिन चुनौती नहीं दे सकते हैं, चुनौती भरे स्वरों में प्रश्न नहीं करना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है आज के श्लोक पर, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं। मैं प्रश्न करूं, ठीक है मैं प्रश्न, हाँ आप प्रश्न। हाँ इनका प्रश्न है कि जो डेली रूटीन में हम कर्म करते हैं क्या वो कर्म है। हाँ आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि सन्यास के क्षेत्र में विरोग यही मानते हैं, सन्यास के क्षेत्र में
आना है, जाना है और दूसरी क्रियाएं करते हैं शरीर को जुड़ा रखने के लिए, क्या वो कर्म है
सन्यास। हाँ आज के श्लोक में जो कर्म बताया है वो इन सब कर्मों को कहा है, और सन्यास में सब कर्मों का त्याग करना है सन्यास में। हाँ वही तो इसलिए कठिनाई है, इसलिए कठिनाई है, इसलिए भगवान कहते हैं ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत कठिन है, है? तो हमने बताया कि मतलब कैसे करना है कि कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, पांचों प्रकार के विषयों का त्याग करना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब त्याग करना है, केवल शरीर की निर्वाह के लिए कर्म करना है, केवल शरीर की निर्वाह के लिए कर्म करना है, और बाकी समय क्या करना है ध्यान योग और बिल्कुल एकांत में रहना विविक्त से देश। आप सुन रहे, तो ये जो विधि है सन्यास की विधि है इसलिए भगवान ने संक्षेप में बताई है कि ये व्यवहारिक नहीं है, है ना। लेकिन दूसरी विधि त्याग की है, उसमें भगवान के सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्म के फलों का त्याग करना है, प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो ये विशिष्ट अनुभवी लोग इसको त्याग कहते हैं। तो ये विधि है, ये जो है भगवान से चला आ रहा ये संप्रदाय, ये हरे कृष्ण आंदोलन इस विधि का पालन करता है। हरे कृष्ण आंदोलन में ये विधि सिखाई जाती है कि कर्म के फलों का त्याग करना है, तो हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जाए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कल आविर्भाव दिवस था, तो कल हमने इस विषय में चर्चा की थी कि उन्होंने हर प्रकार के जो कार्य हैं वो किए जिनसे भगवान की प्रसन्नता होती है। जैसे पहले की रूढ़ियाँ इस तरह की बनी थी कि कोई सन्यासी है वो कार में नहीं बैठेगा, कार में नहीं बैठे, है ना। तो ये रूढ़ियाँ बनी हैं कि कार में नहीं बैठना है, लेकिन पहले तो कार नहीं थी, इसलिए पहले सन्यासी लोग कार में नहीं बैठते थे। लेकिन अब कार अगर है और उससे हम भगवान का प्रचार कर सकते हैं अधिक से अधिक, तो कार में क्यों ना बैठे। तो भक्ति सिद्धांत चतुर्थ ठाकुर एक पहले सन्यासी थे जो कार में बैठ करके वृंदावन गए। सन्यासी को रूढ़ियां बनी है, सन्यासी को सिले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब वो पहले की रूढ़ियां थी कि सिले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिले कपड़े मिलते नहीं थे। अब अपने हाथ से सिलेंगे तो इसमें कितना टाइम खराब होगा, तो सन्यासी सिले कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन अब बिना प्रयास के सिले हुए कपड़े मिलते हैं तो सन्यासी क्यों नहीं पहनेगा। सन्यासी कार में नहीं बैठ सकता, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, ये सब रूढ़ियां बनी है। लेकिन प्रभुपाद जी हवाई जहाज में बैठे और पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया और पूरे विश्व में लोगों को भक्त बनाया। तो ये परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे व्यवहार में हमें कार्य करने हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। आपका प्रश्न है, सन्यास जो है, सन्यास की जो विधि है वो अगर कोई गृहस्थ है तो अपने पुत्र को जो जो जिम्मेदार हो जाए तो जिम्मेदारी सौंप करके सन्यास ले, और अगर विवाहित नहीं है तो सन्यास ले सकता है वैसे। लेकिन जो वैष्णव सन्यास, एक वैष्णव सन्यास एक अलग ही है। एक तो है संन्यास की विधि कि कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो जो है इस संसार को मिथ्या मान करके संन्यास लेता है कि सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, एक मान करके संन्यास लेता है। और दूसरी विधि होती है वैष्णव संन्यास की। तो वैष्णव संन्यास में कृष्ण के द्वारा उससे पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और वो जब संन्यास लेता है तो कृष्ण उसके परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है अपने परिवार की जिम्मेदारी। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन मनुष्य की लीला करते हैं, तो उन्होंने संन्यास लिया तो उनके घर में एक वृद्धा माता थी और जवान पत्नी थी, और उन्होंने संन्यास ले लिया और ये दिखाया कि हम कृष्ण के ऊपर जो है अगर सब कुछ छोड़ देते हैं और कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर संन्यास लेते हैं तो उसमें फिर कोई दोष नहीं लगता। और कृष्ण स्वयं अगर सब प्राणियों का पालन करते हैं तो अपनी पत्नी और अपनी माता को अगर किसी ने छोड़ दिया है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो कृष्ण क्यों नहीं उनकी देखभाल करेंगे, क्यों नहीं उनकी रक्षा करेंगे। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन में भी हाँ, ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके आए हुए हैं और यहाँ पर भजन कर रहे हैं, कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि उनके माता पिता को कभी कष्ट होता है, कभी धक्का लगता है, कई तरह से उनको होता है, लेकिन कृष्ण संभालेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है और सच्चाई से वो कृष्ण की प्राप्ति के कार्य में लगा हुआ है, तो फिर उसका और कोई कर्तव्य नहीं है। बाकी जितने भी कर्तव्य हैं वो भगवान उसकी देखभाल कर लेते हैं। लेकिन सामान्यतः यही है, सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेता है तो अपना जो है अपने पुत्र को अपने घर की जिम्मेदारी सौंप करके वो संन्यास लेता है, तो ये विधि है। लेकिन संन्यास की विधि जो भगवान गीता में बतलाते हैं वो बहुत कठिन है, जो उस तरह से संन्यास लेते हैं कि भक्ति के बिना जो संन्यास लेते हैं बहुत कठिन विधि है। लेकिन जो भक्ति का जो संन्यास है तो इसमें कठिनाई नहीं होती। जो वैष्णव सन्यासी है तो वो अपने शरीर को, मन को और वाणी को भगवान की सेवा में लगाता है, इसलिए वो त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। जो मायावादी सन्यासी हैं वो एक दंडी सन्यासी होते हैं, उनके पास एक दंड होता है, और जो वैष्णव सन्यासी हैं उनके पास त्रिदंड होता है। तो त्रिदंड का मतलब है कि वो अपने मन, वाणी और शरीर को, तीनों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये जो वैष्णव सन्यास होता है ये प्रचार के लिए होता है कि जब अपना पूरा जीवन भगवान नाम के प्रचार में कोई व्यक्ति समर्पित करता है तो वो सन्यास ले सकता है। और जो भक्त होते हैं अगर उनकी नई इच्छा सन्यास लेने की तो जिस आश्रम में और जिस वर्ण में वो रहते हैं उसमें भी उनको पूर्णता है, उनकी पूरी पूर्णता है और उनकी पूरी सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन, वाणी, शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाए हुए है तो चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, किसी वर्ण में और किसी भी आश्रम में हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित है भक्ति के द्वारा, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, अच्छा प्रश्न है। सर्वभूत हितेरता, जो वैष्णव है तो वैष्णव जो कृष्ण का भक्त होता है तो वो ये जानता है कि कृष्ण ही सब प्राणियों के हितकारी हैं, है? सुहृदम सर्वभूता नाम, कृष्ण ही से प्राणी के हितकारी है, तो वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करता है और कृष्ण की सेवा में लगा है और उससे सब प्राणियों के हित होता है। और इसके लिए एक बड़ा वैज्ञानिक उदाहरण है, जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो वो पानी पूरे पेड़ को सींचता है, उसी प्रकार से आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो आप सबकी सेवा कर रहे हैं, जबकि देखने में आप नहीं कर रहे हैं लेकिन वास्तव में आप सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। ये देखने में लगता है कि पेड़ के नीचे आप पानी डाल रहे हैं और पेड़ तो ऊपर जा रहा है, पेड़ तो ऊपर है, तो आप पेड़ की कहाँ सेवा कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप पेड़ की सेवा कर रहे हैं, आप जड़ में पानी डाल रहे हैं लेकिन वास्तव में पेड़ की सेवा आप ही कर रहे हैं। उसी प्रकार से पूरे समाज की, देश की और पूरी सृष्टि की आप सेवा कर रहे हैं अगर आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। यथा तरोर मूल निषेचरेण तृप्यंत तत् स्कंद भुजों पर शाखा, जैसे वृक्ष के जल को सिंचन करने से उसके जितने भी तना हैं और शाखाएं हैं वो सब तृप्त होते हैं। प्राणों पर हाराचा इथिंद्रियाणाम, और जब भोजन पेट में पहुंचाते हैं तो सभी इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती है। तथैव चाच्युत अर्हणिज्या, तथैव चारहणम अच्युतेज्या, उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से सबकी अपने आप पूजा हो जाती है।
ये भी सुना गया है कि जैसे कोई असहाय असहाय करते हैं उससे भी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो क्या वो भी एक तरह की?
हाँ, ये भी है और ये गुण स्वाभाविक होता है भक्त के अंदर, ये गुण स्वाभाविक होता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, ये उसके लिए एक स्वभाव बन जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो परोपकार का कार्य है वो कृष्ण भावनामृत का वितरण करना है, कृष्ण का संदेश देना। अगर हम भगवद गीता की पुस्तक देते हैं किसी को तो भगवान का संदेश उसको मिल गया और भगवान कहते मेरी शरण में आओ, और आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपके जन्म जन्म के कष्ट मिट जाते हैं। तो ये कितना बड़ा आपने सहायता का कार्य किया, सबसे बड़ी सहायता ये है कि भगवान का संदेश दिया जाए। और बाकी जो कार्य हैं, ये भोजन बांटना है, कपड़ा बांटना है, दवाई बांटना है, ये हो ही रहे हैं, ये तो बहुत हो रहे हैं, ये कार्य कौन कर रहा है? इसलिए ये कार्य जो है बहुत जरूरी है और सबसे ऊंचे दर्जे का कार्य है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है दूसरे कार्यों को नहीं कर रहा है। अब हम लोग जो है ये काम नहीं ले रहे हैं कि हम दवाई बांटेंगे और खाना बांटेंगे, कपड़ा बांटेंगे, ये नहीं। हाँ, अगर भोजन बांटना है तो कृष्ण प्रसाद बांटते हैं, तो फूड फॉर लाइफ में प्रसाद वितरण, तो उसमें भी लोगों को भोजन भी मिल रहा है लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक भोजन, वो पवित्र भोजन है। तो अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं। हाँ, आप
भोजन प्रसाद और जो दूसरा प्रसाद है ज्ञान बांट रहे हो आप, ये भी एक प्रसाद ही है, क्या अंतर है?
हाँ, अंतर है, अंतर है। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्छन्दे सर्व किल्बिष है। अगर हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वो जो भगवान का प्रसाद बनता है उसको खाने से हम सब पापों से मुक्त होते हैं। और भुंजते थे तो हम पापा ये प्रचंति आत्म कारणात्, और जो अपने खाने के लिए भोजन पकाते हैं अपना पाप खाते हैं।
वो हमने किया और आप जो बांट रहे हो हमें अभी ज्ञान का प्रसाद दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो ये भी एक तरह का प्रसाद ही है, तो इनमें उसमें और इसमें क्या फर्क?
अंतर ये है कि जो ये जो ज्ञान है तो ये जो है भगवान ने संदेश दिया है जो हम दे रहे हैं, लेकिन जो प्रसाद हम जो खिला रहे हैं ये शरीर के लिए भी है, इसको शरीर की भी रक्षा हो रही है, तो इसलिए हम ये भी हम देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, दोनों चीज़ देते हैं।
किसका श्रेणी ज्यादा है?
दोनों, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है, है ना, दोनों की आवश्यकता है, तो हमें दोनों की आवश्यकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर नताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।